भूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धैः। चतुर्थ्याः प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिविकल्प निदर्शनार्थमाह। आठ मूल कर्म प्रकृतियों में से चौथी प्रकृति मोहनीय है। उस मोहनीय कर्म के भेदों को दर्शाने के लिए आचार्य उमा स्वामी निम्नलिखित सूत्र कहते हैं कि मोहनीय कर्म कितने प्रकार का है और उसके उत्तर भेद कौन से हैं। अभी तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय का वर्णन था, अब मोहनीय का वर्णन है। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विदम षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात् तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। लंबा सूत्र है, 28 प्रकृतियों के नाम है इसमें। सबसे पहले तो बताया कि मोहनी के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनीय श्रद्धा को भ्रमित करता है, चारित्र मोहनीय चारित्र में भ्रम डालता है। फिर अकषाय और कषाय वेदनीय उनके नाम हैं। चारित्र मोह के दो भेद हैं, मोह के दो भेद दर्शन मोह चारित्र मोह। चारित्र मोह के दो भेद अकषाय कषाय, अकषाय को नौकषाय भी कहते हैं। अब दर्शन मोह के त्रि, चारित्र मोह के द्वि और अकषाय के नौ और कषाय के षोडश भेदा सूत्र देखिएगा जिनके पास व्यवस्था हो। अब कौन से भेद हैं वो बता रहे हैं। दर्शन मोह के तीन भेद किए, चारित्र मोह के दो भेद किए और वो दो भेद भी बता चुके हैं, कषाय और नौ कषाय। तो कषायों के भेद कितने थे वो बाद में बता रहे हैं, पहले नौ कषाय का क्रम था। तो नौ कषाय नौ हैं और कषाय 16 हैं। इस तरह सब मिला करके प्रकृति की अपेक्षा 28 प्रकृतियां होती हैं मोहनी की। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभय तदुभयानी ऐसा विग्रह होगा सूत्र में से। तो दर्शन मोहनी के तीन भेद कौन से हैं जो श्रद्धा को दूषित करने वाले हैं, सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और तदुभय का अर्थ होता है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, उभय का अर्थ होता है दोनों। तो तदुभय का अर्थ सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इसको मिश्र भी कहते हैं। ये हो गया दर्शन मोह के। फिर चारित्र मोह के दो भेद अकषाय और कषाय। अकषाय के नौ भेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष और नपुंसक भेद, ऐसे नौ भेद हो गए। फिर कषाय के भेद अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, ये उसके विकल्पा यानी भेद हैं। और चैकश क्रोधमान माया लोभा, और एक एक के ये चार भेद हैं, अनंतानुबंधी के चार भेद क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान के चार क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। इस तरह मोहनीय कर्म का बहुत बड़ा हरा भरा फलता फूलता कुटुंब है, 28 सदस्य हैं इसमें। सम्यक दृष्टियों में क्या होता है कि इनमें 7 सदस्य थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, और सात में से एक सदस्य थोड़ा बहुत काम कर जाता है, सम्यक तो प्रकृति जिसका नाम है, उक्षायोपशमिक सम्यक्त में इसका उदय रहता है, सम्यक्त तो प्रकृति का। और इसके उदय में क्या होता है कि तीर्थंकरों में भी थोड़ा बहुत विकल्प हो जाता है उसको, विकल्प यानी ऐसा भेद करता है वो कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है। ये विकल्प सम्यक प्रकृति के उदय से आते हैं, तो उससे मिथ्यात्व तो नहीं होता, लेकिन इतना भेदभाव होता है तीर्थंकरों में। चल, मलिन और अगाढ़, ऐसे तीन दोष लगते हैं। अब तदुभय यानी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तो मिश्र श्रद्धा रहती है, सर्वज्ञ के तत्व और छद्मस्थों के तत्वों को समान रूप से वो स्वीकार कर लेता है, तो उसका ज्ञान भी मिश्र रहता है, सम्यक और मिथ्या दोनों प्रकार का ज्ञान उसमें पाया जाता है। और मिथ्यात्व के उदय में विपरीत श्रद्धा होती है, फिर नौ कक्षाओं के भेद है हास्य, जिस कर्म के उदय से हंसी आती है, रति यानी जिस कर्म के उदय से प्रीति होती है, राग अलग चीज है, राग का ही एक भेद है प्रीति, लेकिन विशेष प्रकार से प्रेम जो होता है उसको प्रीति कहते हैं। अब वो के इंद्रियों के विषय के प्रति भी हो सकता है, अपने सगे संबंधियों के प्रति भी हो सकता है, मित्रों के प्रति भी हो सकता है, किसी के भी प्रति हो सकता है। जैसे किसी को भिंडी की सब्जी से प्रीति है और बीन्स के प्रति राग है और करेले के प्रति द्वेष है, तो ये उसके उदाहरण है। फिर अरति, अरति यानी अप्रीति होती है, यानी मन नहीं लगता कहीं किसी स्थान में, उसको अच्छा नहीं लगता आने के बाद, या किसी मौसम में उसको वो मौसम पसंद नहीं आता, अरे ठंड के मौसम में तो दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को ठंड के मौसम में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बरसात में बोलते हैं क्या गीला गीला गीले गीले गीले। तो ये तो प्रकृति का परिणमन है, इसमें राग द्वेष कराने वाला जो कर्म है वो ये है, मोहनी है, और उसके ये भेद हैं प्रीति अप्रीति। फिर शोक, इष्ट वियोग में होने वाली जो वेदना होती है उसको शोक कहते हैं। भय, कोई अनिष्टकारी कोई घटना या कोई पदार्थ है उससे बचने का भाव आता है जिसमें, उससे बचने का एक विकल्प आता है, वो भय है, डर लगता है उससे, भय से चिंता होती, चिंता से तनाव होता है, तनाव से बीमारियां होती। अभी जो न्यू एज हीलिंग है वो केवल दो भावों पर फोकस करते हैं, ये इतने सारे जो भाव हैं इनमें किसको किसको संभालोगे आप? तो उनका कहना है कि आप एक वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, मतलब एक करुणा और प्रेम, प्रेम को खास जोर दे करके वो बोलते हैं कि आप अपने से प्रेम करो, अपने आप को स्वीकार कर लो, आप जैसे हो, गरीब अमीर बीमार स्वस्थ निर्धन धनवान, वो जो भी है, जितने भी भेद हैं आपके वो सब स्वीकार कर लो, और स्वीकार करके अपने को चाहने लग जाओ, और फिर डरना छोड़ दो। आप अपन जैन सिद्धांत से देखें तो कर्म का जो उदय होता है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार पर टिका होता है, और अगर ये चार न मिले तो वो कर्म जो है वो वेस्ट हो जाएगा, तो जैसे नरकों में पुण्य वेस्ट हो जाता है क्योंकि वहां पुण्य का माहौल ही नहीं है, और देवों में देवगति में पाप कर्म का उदय वेस्ट हो जाता है, उदय तो आता है पर वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चार बातें आवश्यक हैं, और अपने हाथ में केवल भाव है। क्षेत्र कथनचित अपन बदल सकते हैं, कहीं किसी क्षेत्र में अपने अशुभ का उदय चल रहा है ज़्यादा तो वो स्थान बदल दो, हो सकता है, पर वो भी एकदम से हर जगह आप नहीं कर सकते वैसा, एक सीमा है उसकी भी। और समय को भी बदल सकते हैं आप, जैसे मान लो आप 12 बजे भोजन करते हो और आपको कुछ तकलीफ होने लग जाती है तो आप 11 बजे कर सकते हैं या फिर 1 बजे कर सकते हैं, या उसको समय को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, तो कर्म के फल में अंतर पड़ता है। तो वो लोग ये कहते हैं कि बस अपने अंदर प्रेम भावना रखो सबके प्रति और डरना छोड़ दो तो फिर जीवन अच्छा चलने लग जाता है, बस इतनी सी बात, दो बातें पकड़ते हैं वो। और यहां पर जैनाचार्य कहते हैं कि करुणा भी अपेक्षित है, क्योंकि जिसको अपने प्रति प्रेम होगा वो दूसरे के प्रति क्रूर नहीं हो सकता। अपने प्रति प्रेम का अर्थ ऐसा नहीं है कि स्वार्थी बन जाए, लेकिन अपने को जो अपन बेचारा समझते हैं, अपने आप को अभागा समझते हैं, अपने आप को दीन हीन, और फिर यानी एक प्रकार से ये देखो कि अपने जो आत्मस्वरूप है उससे उल्टा अपने बारे में जो कुछ अपन बना लेते हैं धारणाएं, उससे नुकसान होता है, अपने को तकलीफ पहुंचती है। तो ये सारी बातें हैं। फिर जुगुप्सा का अर्थ होता है ग्लानी। स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये तीन प्रकार के वेद होते हैं जिनसे लिंग की अनुभूति होती है। स्त्री रूप अपनी अनुभूति करना, पुरुष रूप अनुभूति करना और वैसी अभिलाषाएं करना, ये सब वेद के कारण होते हैं। भाव वेद कहलाते हैं, ये भाव वेद जन्म से मृत्यु तक चलता है। द्रव्य वेद में तो आजकल चेंजेस करते हैं वो लोग, हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस और फिर सेक्स चेंज सर्जरी वगैरह करके लड़के को लड़की बना देते हैं, लड़की को लड़का बना देते हैं, ये सब करते हैं। पर भाववेद के विषय में ये लिखा है कि ये बदलता नहीं है, कषायें बदल जाती हैं। क्रोध है तो मान कषाय उदय में आ सकती है, माया उदय में आ सकती है, किसी भी क्रम से उदय में आ सकती है कषाय। एकदम क्रोध के बाद लोभ भी आ सकता है उदय में। जैसे बच्चा जो है तोड़फोड़ मचा रहा है तो एकदम आप उसको चॉकलेट दिखाते हैं तो फिर एकदम लोभ आ जाता है उसको क्रोध के बाद तुरंत लोभ आ जाता है। तो वो कषाय किसी भी क्रम से चेंज होती है, नष्ट होने का क्रम अलग है अपना। कषायों का नाश जो होता है वो क्रोध, मान, माया और लोभ, इस क्रम से नष्ट होती है कषाय। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये जो नाम है अनंतानुबंधी, अनंतम मिथ्यात्म, अनंत संसार कारणत्वाद अनंतम मिथ्यात्म, अनंत संसार में कारणभूत होने से अनंत मिथ्यात्व को कहते हैं, शायद यही लिखा हो। अनंत संसार कारणत्वान मिथ्या दर्शनम अनंतम, यही लिखा है सर्वर्थ सिद्धि में। अनंत संसार का कारण होने के कारण मिथ्या दर्शन को अनंत कहते हैं। और तद अनुबंधिनो नंतानुबंधिना, उससे संपर्क कराने वाली जो कषाय होती है वह अनंतानुबंधी कषाय कहलाती। क्रोध मान माया लोभ, तो इस तरह ये मोहिनी कर्म का विस्तार था। फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय वो होती है जो सम्यक दर्शन तो होने देती है, अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन भी नहीं होने देती है अगर उदय में हो तो। भले ही मिथ्यात्व सम्यक का सीधा सीधा दुश्मन है लेकिन अनंतानुबंधी भी सम्यक दर्शन को नहीं होने देती। और फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो होती है वो अप्रत्याख्यान पर आवरण डालती है। अप्रत्याख्यान क्या वस्तु होती है? अप्रत्याख्यान, थोड़ा प्रत्याख्यान, अणुव्रत, तो अणुव्रत में बाधा डालती हूँ, संयम संयम नहीं होने देती, अप्रत्याख्यान अवण कषाय, तो उसको अविरत रहना पड़ता है। फिर प्रत्याख्यान अवण जो है वो प्रत्याख्यान यानी सकल संयम को नहीं होने देती, तो जब तक वस्त्र है तब तक प्रत्याख्यान अवण कषाय छूट नहीं सकती, मुनि दीक्षा के बाद ही छूटती है। और संज्वलन का अर्थ होता है जो संयम के साथ जलते रहती है, जो कषाय संयमी के अंदर भी प्रज्वलित रहती है, संज्वलन, दशम गुणस्थान तक वो कषाय रहती है, उसके तीव्रोदय में प्रमाद होता है, मंदोदय में अप्रमत्त गुणस्थान होता है। अब आयु कर्म के चार भेद हैं, नारक तैर्य घ्योन नारक तैर्य घ्योन मानुष दैवानी, नारक नरक संबंधी आयु को नारक आयु कहते हैं, तैर्यग्योन तिर्यंच संबंधी, फिर मानुष मनुष्य संबंधी और देव संबंधी दैव, ऐसी आयु है। नरकेषु भवम नारकम आयु, नरकों में होने वाली आयु नारक आयु है। तिर्यग्योनिषु भवम तैर्यग्योनम, तिर्यग्योनि में होने वाली तैर्यग्योन। मानुषेषु भवम मानुषम, मानुषों में होने वाली मानुष आयु। मानुष शब्द भी हिंदी में चलता है, अरे भले मानुष, कुछ तो समझ, मानुष शब्द का प्रयोग होता है। देवेषु भवम दैवम, देवों में होने वाली आयु दैव आयु। नरकेषु तीव्र शीतोष्ण वेदनेषु यन्निमित्तं दीर्घ जीवम न तन नारकम, जिस आयु के निमित्त से नरकों में तीव्र शीत और तीव्र उष्ण की वेदनाओं में रहना पड़ता है वो नारक आयु है। इसी तरह देवायु मनुष्यायु और तिर्यगायु। आयुष चतुर्विधम व्याख्यातम, इस तरह चार आयुओं का व्याख्यान हो गया। तदनंतरम उद्दिष्टम यह नाम कर्म, उसके बाद कहा हुआ जो नाम कर्म था, तद उत्तर प्रकृति निर्णयार्थम आह, उसकी उत्तर प्रकृतियों का निर्णय करने के लिए आचार्य कहते हैं, गति जात शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघात आतपोद्योत उच्छ्वास विहायो गतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादे यश कीर्ति सेतराण तीर्थ कर्तुम च। गति, गति नाम कर्म से चार गतियां मिलती है, आयु नाम कर्म से वहां की अवधि मिलती है, वो गति कितने समय तक के मिली है वो आयु नाम कर्म, आयु कर्म का वो फल है। और गति नाम कर्म से क्या होता है, वो गति प्राप्त होती है, मनुष्य गति अपने को मनुष्य गति नाम कर्म से प्राप्त हुई है, और जो आयु की अवधि प्राप्त हुई है वो आयु कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। फिर जाति, जाति का अर्थ होता है एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसी जातियां होती है, तो अपन पंचेंद्रीय जाति वाले हैं। फिर शरीर, शरीर में औदारिक वैकरिक आहार ये सब शरीर होते हैं। तो वो शरीर अपने को औदारिक शरीर प्राप्त हुआ। फिर अंगोपांग नाम कर्म, अंग और उपांग बनते हैं शरीर में, उस नाम कर्म के उदय से बनते हैं। निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श, ये सारे नाम कर्म के भेद है। इसका संबंध ये शरीर के साथ होता है। कुछ नाम कर्म जीव विपाकी हैं, कुछ नाम कर्म पुद्गल विपाकी हैं, कुछ नाम कर्म क्षेत्र विपाकी हैं। भव विपाकी कोई नाम कर्म नहीं है, भव विपाकी केवल आयु कर्म है। एक एक नाम कर्म का परिचय देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, जिसके उदय से शरीर की रचना होती वो शरीर नाम कर्म है। उसके पांच भेद है, औदारिक वैकरिक आहार तेजस और कार्मण शरीर। और जिसके उदय से अंगोपांग की रचना होती है वो अंगोपांग नाम कर्म है।
अंगोपांग के तीन भेद हैं, औदारिक, वैकृत और आहारक, जिसके निमित्त से परिनिष्पत्ति अर्थात रचना मात्र होती है, वह निर्माण नाम कर्म है। दो प्रकार का निर्माण होता है, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। यानी ये आंख आदि जो है अपने स्थान पर जब निर्मित होती है, सही स्थान पर, वो स्थान निर्माण है। कुछ लोगों की भौहें जो रहती है ना, एक ऐसे ऊपर रहती है, तो उस स्थान निर्माण नाम कर्म में कुछ अशुभ प्रकृति उदय में आ जाती है, तो फिर ये ऐसे आड़े टेढ़े आकार बन जाते हैं। नाम कर्म को चित्रकार कहा है कि वो जैसी कलाकृति बनाना हो बना सकता है, अच्छी बुरी जो भी। स्थान और प्रमाण, प्रमाण का अर्थ होता साइज, साइज कितना होनी। कभी कुछ लोगों की नाक बहुत बड़ी होती है, कुछ लोगों के होंठ बड़े बड़े होते हैं, कुछ लोगों के कान बड़े होते हैं। कान बड़े होना तो बताते हैं कि अच्छी बात है, अनुभवियों के बड़े बड़े कान होते हैं, ऐसा कहते हैं। कर्म के उद्देश्य होते हैं, और कर्म का उदय जो होता है अपने भावों से और अपने क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों के ऊपर आधारित होता है। तो निर्माण नाम कर्म के दो भेद हो गए। फिर जाति नाम कर्म के उदय का आलंबन पाकर चक्षु आदि अवयवों के स्थान और प्रमाण की रचना ये निर्माण नाम कर्म करता है। आंखें हैं, कान आदि, नाक वगैरह, होठ, इसकी रचना निर्माण नाम कर्म से अपने ठिकाने पर होती है। पंचेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय से पांच इंद्रियों के योग्य तो आप हो गए, लेकिन अब पांच इंद्रियों को कहां सेट करना, वो नाम कर्म से होता है, निर्माण नाम कर्म से। फिर शरीर नाम कर्म के उदय से जो पुद्गल जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो वो जोड़ने वाला कर्म जो है वो बंधन नाम कर्म है। और जिसके उदय से जो शरीर बनते हैं उसमें हर जगह गड्ढे गड्ढे नहीं होते, एकदम व्यवस्थित पूरा आकार बनता है, वो निश्छिद्र बनाने वाला कर्म संघात नाम कर्म है। जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों की आकृति बनती है वो संस्थान नाम कर्म है, आकृति बनती है। उसके छह भेद हैं, समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमंडल, फिर स्वाति, कुब्जक और वामन और हुंडक, ऐसे संस्थान है। जिसके उदय से अस्थियों का बंधन विशेष होता है वो संघनन नाम कर्म है। उसके भी छह भेद हैं, वज्रषभ नाराज संघनन, वज्र नाराज, नाराज संघनन, अर्ध नाराज, कीलिका और असम प्राप्ता सिरपाटिका, हड्डियों की मजबूती जो रहती है उसको संघनन बोलते हैं। संघनन और सहन शक्ति दोनों अलग वस्तु हैं। सुकुमाल स्वामी के पास वज्र ऋषभ नाराज संघनन था, लेकिन जब तक राग था तब तक सहन शक्ति नहीं थी, जब वैराग्य आया तो सहन शक्ति आ गई और इतना सहन कर लिया कि सर्वार्थ सिद्धि चले गए। जिसके उदय से स्पर्श की उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नाम कर्म है। यानी किसी का शरीर छूने में खुरदुरा होता है, किसी का एकदम चिकना होता है, स्मूद होता है, रफ और स्मूद, हैवी लाइट, हल्का भारी, ये सब स्पर्श नाम कर्म से होते हैं। मृदु, कठोर, ये सब भेद उसी के हैं। स्निग्ध, रूक्ष, शीत, उष्ण, कुछ ठंडे शरीर वाले प्राणी होते हैं उनको शीत नाम कर्म का उदय होता है, अपन गर्म शरीर वाले हैं तो उष्ण नाम कर्म का उदय रहता है। जिसके उदय से रस में भेद पड़ता है वह रस नाम कर्म। यानी जो भी शरीर होगा उसमें कोई ना कोई टेस्ट रहेगा। अब शरीर करेला भी तो एक वनस्पति का शरीर है ना, तो उसमें कड़वा टेस्ट है, उसमें उस नाम कर्म का उदय है। और इसी प्रकार पके हुए आम में मीठा स्वाद है या गन्ने में मीठा स्वाद है शुगर केन में, तो वैसे नाम कर्म के उदय से वैसे स्वाद बन जाते हैं शरीरों में। त्रस शरीर में भी अलग अलग स्वाद होते हैं। अब ये बात अलग है कि त्रस जीवों का सेवन ये वर्जित है, लेकिन सेवन वर्जित है इसका अर्थ ये नहीं कि ये स्वाद रहित हो जाए। इनमें भी कुछ ना कुछ स्वाद होता है पुद्गलों में। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला। स्पर्श भी रहेगा उसमें, रस भी होगा, वर्ण भी होगा और गंध भी होगी। जिसके उदय से गंध की उत्पत्ति, उसका नाम गंध नाम कर्म है। उसमें सुरभि गंध और दुरभि गंध, असुरभि गंध खुशबू और बदबू उससे होती है। जिसके निमित्त से वर्ण विभाग होते हैं वो वर्ण नाम कर्म है। यहां वर्ण विभाग का अर्थ वो नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, यहां वर्ण विभाग का अर्थ कलर्स का विभाजन होता है। आंखों का कलर, जीभ का कलर, बॉडी का कलर वर्ण नाम कर्म से बनता है। उसके पांच भेद हैं, कृष्ण, नील, रक्त, पीत और शुक्ल। और अनुपूर्वी नाम कर्म ये होता है कि जब मरण के बाद जीव जाता है दूसरे शरीर में, तो रास्ते में उसका आकार जो है छोड़े हुए शरीर के समान रहता है। जिस शरीर को छोड़ करके गया ना, वैसे ही शेप रहता है जीव का, तो वो अनुपूर्वी नाम कर्म है। जैसे मनुष्य मर करके देव बन रहा है, तो फिर मरने के बाद रास्ते में जो उसका आकार है वो देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय से। आगामी गति के पूर्व की गति वाला आकार अनुपूर्वी कर्म से बना रहता है। उसकी चार गति संबंधी चार भेद हैं। जिसके उदय से लोहे के पिंड के समान न तो भारी होता है, न ही अर्कतूल के समान एकदम हल्का होता है, वो अगोरो लघु नाम कर्म है। अर्कतूल जानते हैं आप, अकौवे का जो फल होता है आंख का, अर्क श्वेतार्क देखा ना आपने, उसका जो फल होता है उसको खोलेंगे ना तो अंदर से वो रोए रोए वाले वो निकलते हैं बीज उसके, चार डेंडेलियन बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको ऐसे फूंक मारे या फिर ऐसे हवा चले तो वो ऐसे उड़ते हुए चले जाते हैं, एकदम पूरे बाल 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 रहते हैं, बीच में एक बीज रहता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि उतना हल्का भी नहीं होता है अपना, पर उतना एकदम भारी भी नहीं होता कि एकदम धस जाए अंदर, तो एकदम अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से ऐसा बैलेंस बनता है। फिर जिसके उदय से स्वयंकृत उद्बंधन और पहाड़ से गिरना आदि उपघात होता है वह उपघात नाम कर्म है। यानी अपने को अपने ही शरीर से नुकसान होने लग जाए, पैरों के नाखून ऐसे हैं कि बिल्कुल वहीं चुभ रहे हैं अपने अंगूठों में और पैरों में, ये उपघात नाम कर्म है। या बैल का सिंह ऐसा है कि वो उसकी आंख में जाकर के लग रहा है, या और भी कई प्रकार के ऐसे होते हैं अंगों पांग की जिसमें अपने को ही तकलीफ होने लग जाती है, तो उपघात नाम कर्म है। अथवा आत्महत्या करने में समर्थ होता है वो, मतलब अपना ही नाश करने में वो समर्थ होता है, तो वो भी उपघात नाम कर्म के उदय से होता है। ऐसा नाम कर्म है कि जिसमें अपन कोशिश करो तो अपनी मौत भी हो जाए। जिसके उदय से पर शस्त्र आदि का निमित्त पाकर व्याघात होता है वह परघात नाम कर्म, और जिसके माध्यम से दूसरों के द्वारा घात हो सकता है लेकिन अपने द्वारा घात नहीं होगा अपना, वो परघात नाम कर्म। जिसके उदय से शरीर में आतप की प्राप्ति होती है, आतप का अर्थ होता है धूप, वो जैसे सूर्य के विमान में जो पृथ्वी का एक जीव है उनमें आतप नाम कर्म है, तो एकदम मूलुंड पहावग्गी आतप में मूल स्थान उष्ण नहीं होता लेकिन उसकी प्रभा उष्ण होती है, तो सूर्य की जो रोशनी है वो गर्म होती है। ये सूर्य बिंब में होता है, और जिसके निमित्त से शरीर में प्रकाश तो होता है लेकिन शीतल प्रकाश होता है वो उद्योत नाम कर्म है। चंद्र बिंब में होता है और जुगनुओं में पाया जाता है। जिसके निमित्त से श्वासोच्छ्वास होते हैं वो उच्छ्वास नाम कर्म है, और जिसके निमित्त से आकाश में गमन होता है वो विहायो गति है। अब आप आकाश में गमन का अर्थ एकदम ऊपर आकाश में गमन का मत सोचना, यहाँ धरती पर भी अपन चलते हैं तो आकाश में ही चलते हैं, धरती पर तो सपोर्ट लेते हैं, चलते तो आकाश में ही है, धरती में सिर्फ पैरों से सपोर्ट लेकर थोड़ा धक्का देते हैं, जमीन में थोड़ी चलते हैं अपन, चलते आकाश में ही है ऐसा। फिर जिसके निमित्त से, इसके दो भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। किसी की चाल बहुत सुंदर लगती है और किसी की चाल बहुत बेडौल लगती है, अटपटी लगती है, तो ये पुण्य और पाप इसके में भेद हैं। फिर शरीर नाम कर्म से रचित शरीर, जिसके निमित्त से एक जीव का निवास होता है वो प्रत्येक नाम कर्म है। जैसे मनुष्य का शरीर है, इसका स्वामी एक जीव है, इसके आश्रय से भले और भी जीव रहे, पेट में कीड़े भी हो सकते हैं और भी घावों में कीड़े हो जाते हैं, लेकिन इस शरीर का स्वामी तो अपने आप में एक ही जीव है, तो प्रत्येक नाम कर्म है। और साधारण नाम कर्म में एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, अनंत जीव एक शरीर में रहते हैं। फिर जिसके उदय से द्वींद्रिय आदि में जन्म होता है वो त्रस्त नाम कर्म है। जिसके उदय से एकेंद्रिय आदि में जन्म होता है, एक इंद्रियों में जन्म होता है वो स्थावर नाम कर्म है। जिसके उदय से दूसरों को अपन प्रिय लगते हैं वो सुभग नाम कर्म है, और जिसके उदय से अप्रिय लगते हैं वो दुर्भग, वो आगे बताएंगे। असली में नाम, ये सब कर्मों का पूरा नाटक चल रहा है, और अपन बुरा मान जाते हैं किसी भी बात को लेकर और फिर और नए कर्म बांध लेते हैं। ये सब कब से चल रहा है? अभी तो अपन ये समझो कि अपना असली दुश्मन कर्म है, ये बात अपन ने शास्त्र से समझी पहली बार। अभी तक तो यही समझ रहे थे कि बाहर ही सब लोग परेशान करते हैं हमें, अब समझ में आया कि अंदर से जो कर्म उदय में आता है वो अपने को परेशान कर रहा है, तो उसको जीतने का सोचना है। बाहर क्या है कि ये संभव नहीं है कि आप समुद्र को झाड़ू लगाकर साफ कर दो, कहाँ तक लगाओ झाड़ू, और ये संभव नहीं है कि आप पूरी धरती पर इतना बड़ा एक रेनकोट बनाओ कि पानी नीचे ना जाए मिट्टी में, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने को बचा सकते हैं, अपने पैरों में कुछ पहन सकते हैं, अपने शरीर पर कुछ पहन सकते हैं, उसी प्रकार अपनी आत्मा पर रत्नत्रय का अगर आप आवरण प्राप्त कर लेते हैं तो फिर कर्मों से अपनी रक्षा होती है, नवीन कर्मों से, और पुराने कर्मों की सफाई होती है, जो अंदर जमा हो गए उनको साफ कर देते हैं। और जिसके उदय से सुंदर होने पर भी अप्रिय होते हैं वो दुर्भग नाम कर्म है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, सुंदर होने के बाद भी कोई उनको चाहता नहीं है, पता नहीं क्या बात है, दुर्भग नाम कर्म, इससे पता चल रहा है क्या बात है। और जिसके निमित्त से सुंदर स्वर प्राप्त होता है वो सुस्वर नाम कर्म है, बुरा स्वर प्राप्त होता है दुस्वर नाम कर्म है, जिसके उदय से आकार अच्छा प्राप्त होता है वो शुभ नाम कर्म है, आकार बुरा प्राप्त होता है। रमणीय अवयव यानी एक एक अंगोपांग एकदम अच्छे प्रपोर्शनेट होते हैं वो शुभ नाम कर्म है, और डिसप्रपोर्शनेट होते हैं वो अशुभ नाम कर्म है। सूक्ष्म शरीर का निर्वर्तक सूक्ष्म नाम कर्म है कि वो किसी से टकराएगा नहीं, कहीं से भी आर पार निकल जाएगा। और बाधर शरीर जो होता है बाधित भी होता है और बाधा भी करता है। और जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्तियां पूर्ण होती है वो पर्याप्ति नाम कर्म है। उसके छह भेद है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति नाम कर्म, इंद्रिय पर्याप्ति, प्राणापान पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। छह पर्याप्तियां होती हैं। जो छह प्रकार की पर्याप्तियों के अभाव का कारण है वह अपर्याप्ति नाम कर्म है। वात पित्त कफ आदि धातुओं को स्थिर रखने वाला स्थिर नाम कर्म होता है, बैलेंस में रखता है, संतुलित रखता है। इससे विपरीत अस्थिर नाम कर्म होता है। प्रभायुक्त शरीर का कारण आदेय नाम कर्म है, एक कांति रहती है उस शरीर में, आदेय नाम कर्म का उदय होता है तो। और ये अणुव्रत धारण करने के बाद नियम से होता है। उसके पहले हो भी सकता है ना भी हो, लेकिन अणुव्रत धारण करने के बाद अवश्य होगा आदेय नाम कर्म, क्योंकि आदेय का उदय अनादेय का उदय चौथे गुणस्थान तक। निष्प्रभ शरीर का कारण अनादेय नाम कर्म है। पुण्य गुणों की प्रसिद्धि का कारण यश कीर्ति नाम है। यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से पवित्र गुणों की कीर्ति होती है। इससे विपरीत फल वाला अयश कीर्ति नाम कर्म है, और उससे विपरीत माने अपमान बदनामी होने करने वाला जो कर्म है वो अयश कीर्ति नाम कर्म, जो सीता जी के उदय में आया था, लोकापवाद हो गया था। उस भाव का दोष नहीं था उनका, पर कर्म उदय में आया और अंतिम कर्म जो है तीर्थंकर बनाने वाला कर्म तीर्थंकर नाम कर्म है। ये नाम कर्मों का वर्णन पूर्ण होता है। इसके बाद गोत्र और अंतराय कर्म के भेद आगामी सत्र में अपन देखेंगे। जय नमो हेतु शासनम।